आहान का अजीब बिहेवियर। ध्रुव हैरानी से बार बार आहान की ओर एकटक देख रहा था और परेशान होकर सोच रहा था, आखिरकार आहान को हो क्या गया है। अब आगे, क्योंकि राजवीर के बारे में ये सब कहते हुए आहान और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और अगले ही पल उसकी वो सीरियसनेस गुस्से में बदल गई थी। वहीं आकाश और सुमित की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आहान ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन अकेले कर ली थी और उन्हें भनक तक नहीं लगने दी। अविनाश की आंखों में भी भयानक तूफान उमड़ रहा था। उसके दिल में भरा गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब से अविनाश को ये पता चला था कि राजवीर जिंदा बच गया है, तब से ये बात उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। उसी वक्त टाइगर और अबीर राठौर, जो कि एक साथ राजवीर के ठिकाने पर गए थे, वो वहां पहले अविनाश से मिले और अविनाश को अबीर की सिचुएशन बारे में भी पता चला। जैसे ही अविनाश ने ये सुना कि अबीर सिंह राठौर बर्बाद हो गया, तो वैसे ही उसने अपना सर अविश्वास में हिलाया और अबीर की ओर देखते हुए तुरंत बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो अबीर, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राजवीर ने तुम्हें फाइनेंशियली तरीके से तोड़ा है तो तुम फिक्र मत करो, मैं एक बार फिर से तुम्हारा बिजनेस, सारे स्टार्टअप तैयार करवा दूंगा। अबीर अविनाश की इस बात पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, फिर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, अविनाश भाई, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास ज़मीन, ज़्यादा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है या नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास अभी भी इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं बिना कुछ करे भी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। सो डोंट वरी, मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है। ये बोलकर अभी रविनाश की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, फिलहाल आहान ने आप सबको जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। जब आहान ने टाइगर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज रहा था, तो अबीर ने भी उसके साथ जाकर सारी स्थिति के बारे में पता लगा लिया था, क्योंकि इस बार वो राजवीर के मामले में बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इस बार न केवल उन्हें राजवीर जिंदल से लड़ना था, बल्कि ब्लैक डेविल यानी सम्राट और साथ ही साथ अरमान सिंघानिया से भी लड़ना था, तो इस सिचुएशन को वो किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर रौनक एंजल से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि एंजल कितने ही सारे गिफ्ट्स रौनक की बेटी के लिए लेकर आई थी, जिसे देखकर रौनक का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उसे एंजल से अपनेपन का एहसास हो रहा था। फिलहाल वहीं मारिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। माँ बनने के बाद उसे एक अलग ही तरह की फीलिंग का एहसास हो रहा था, जिससे उसका स्वभाव भी थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। जब मारिया एक वो छोटी बच्ची थी जिसका इस दुनिया में होना ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता था, तब अरमान ने अगर मारिया को नहीं बचाया होता तो न जाने मारिया आज कहाँ होती। फिलहाल मारिया अपने बेटे को बार बार प्यार से निहार रही थी और उसे बेहद ही प्यारी फीलिंग आ रही थी और उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अपनी बातें कंप्लीट करने के बाद आहान बिना वहां रुके सीधा किचन में चला आया था। तब आहान को किचन में देखकर नानी माँ हैरानी से चौंक गईं और इस वक्त नानी माँ अपनी आंखों के सामने मारिया और रौनक के लिए खाना तैयार करवा रही थी और नानी माँ की फरमाइश पर आज शेफ ने बेहद हल्का सा मसाले वाला खाना तैयार करवा दिया था, जिसे देखकर आहान आश्चर्य से चौंक गया और नाराज होते हुए बोला, नानी माँ, ये क्या है? आपने इस मूंग की दाल की खिचड़ी में इतना ज्यादा तड़का क्यों लगाया है? ये तो किसी रेस्टोरेंट की मसालेदार खिचड़ी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने रौनक के लिए फीकी दाल तैयार करवाई है। आहान के सवाल करने पर नानी माँ थोड़ी सी ठिठकी, फिर जवाब में नानी माँ ने हाँ में मुंडी हिला दी। अरे बिटवा, तुम तो जानते हो ना अपनी हवा हवाई को, खाने पीने के मामले वो कितनी ज्यादा बदमाश है। उसी ने फरमाइश करी है, नानी माँ, अगर आपने इस बार थोड़े से मसाले और तड़के वाली दाल मुझे नहीं ला कर दी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो बस, रौनक बिटिया की फरमाइश है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी ना बेटा, इसलिए मैं उसके लिए ये दाल बनवा रही हूँ, मैं उसे भूख थोड़ी ना रख सकती हूँ। ये बोलकर नानी माँ मुस्कुराई। नानी माँ का जवाब सुनकर आहान हैरानी से उस मसाले वाली दाल को देखने लगा, जिससे उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। फिर वो एकदम से बोला, नानी ना, प्लीज़ आप थोड़ा सा साइड हटिए, मैं खुद उसके लिए खाना तैयार करूँगा। वहीं नानी माँ हैरानी और अविश्वास भरी नज़रों से आहान को देखती रह गई। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, आहान ने फटाफट से बिना तड़के के केवल उबली हुई हल्दी और नमक में बनी हुई मूंग दाल की खिचड़ी रौनक के लिए तैयार कर दी और खुद ही उसे वहां से लेकर जाने लगा। और जब नानी माँ ने उसे रोकना चाहा, तब आहान एकदम से बोला, नानी माँ, वो आपके सामने जिद करेगी लेकिन मेरी बात आसानी से मान जाएंगी, मैं खुद ही उसे ये खिला कर आऊँगा, डोंट वरी। ये कहते हुए वो फटाफट से वहां से चला गया। वहीं एंजल ने जैसे ही आहान को वहां देखा तो वो मुस्कुराते हुए खड़े होकर बोली, आइए ना आहान भैया, अब आप अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिला लीजिए, तब तक मैं बाकी सबसे मिल लेती हूँ। ये बोलकर एंजल मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और तब आहान फटाफट से आगे आया और रौनक को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखकर बोला, ये लो और अब तुम्हें ये खाना पूरा फिनिश करना है। आहान को वहां देखते ही रौनक खुश भी थी, नर्वस भी, उसे डर भी था कहीं कुछ सपना तो नहीं। लेकिन जैसे ही रौनक ने उसके हाथ में उबली हुई दाल देखी तो उसका दिमाग पूरी तरह से छल्ला गया। वो थोड़ी इरिटेट आवाज में बोली, ये सब क्या है? मैंने तो नानी माँ से कहा था कि मुझे पीने के लिए कम से कम तड़का लगा कर दाल दें,
ये फीकी दाल में और नहीं पी सकती। हर दो घंटे बाद मुझे उबली हुई दाल पीनी पड़ रही है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। अब मैं इतना फीका फीका खाना और नहीं खा सकती, क्योंकि रौनक ने प्रेगनेंसी में इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खाई थी कि उसका दिल एक बार फिर से अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें खाने को कर रहा था, और वो ये फीका उबला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, और स्पेशली आहान के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आहान ने अभी तक उससे कोई प्रॉपर कॉन्वर्सेशन किया ही नहीं था, इसलिए उसे आहान पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिलहाल आहान ने रौनक की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और देर न करते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया, और बिना रौनक की मर्जी के उसे अच्छी तरह से खाना खिलाने के बाद आहान बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया, जिसे देखकर रौनक को और भी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच रही थी कि आहान ने अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा था, केवल हॉस्पिटल में एक ही बार उसे गोद में लिया था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, तो ये सोचते हुए रौनक का दिल पूरी तरह से भर आया था। वहीं टाइगर स्टडी रूम की मीटिंग खत्म करने के बाद मारिया के पास जाना चाहता था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने देखा कि आहान अपने हाथों से रौनक को खाना खिला रहा है, तो वो अब थोड़ा सोच में पड़ गया। यार, मारिया मेरे बारे में क्या सोचेगी कि बच्चा पैदा होने के बाद मुझे उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्या अच्छा लगेगा मारिया को इस हालत में परेशान करना में। मुझे उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि मेरी जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बच्चे से कम है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन में इस बात को लेकर कोई इनसिक्योरिटी हो जाए। कहीं ना कहीं टाइगर इस वक्त मारिया की हेल्थ को लेकर चिंतित था। तभी टाइगर ने देखा कि नानीमा मारिया के लिए खाना लेकर वहां आ रही हैं। तब टाइगर नानीमा के पास आया और बिना कुछ कहे उसने नानीमा के हाथों से खाने की थाली ले ली थी।
अब ये देखकर नानीमा थोड़ी सी सक पका गई, लेकिन अगले ही पल नानीमा मुस्कुराकर एकदम से सोचने लगी। पूरे एक डेढ़ महीने तक मियाँ बीवी को न मिलने देना, उसके बच्चे को न देखने देना, ये सिर्फ हमारे जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए नानी माँ ने बिना कुछ कहे टाइगर के हाथों में खाने की थाली पकड़ा दी थी और खुद वहां से चली गई थी। वहीं रौनक आहान के अजीबोगरीब हरकतें देखकर परेशान थी, क्योंकि उसे ऑलरेडी घर पर आए हुए 3 से 4 दिन पूरे होने वाले थे और वो अब थोड़ा बहुत ठीक भी महसूस कर रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो अब आहान पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेगी। अगर उसे लग रहा है कि उसकी बेटी की वजह से उसके सपने टूट गए हैं, तो वो अब आहान से अलग हो जाएगी। भले ही सिंघानिया परिवार के पास रुपया पैसा दौलत और पावर की कमी न हो, लेकिन कहीं ना कहीं रौनक को लग रहा था कि शायद आहान को उसकी बेटी का इस घर में रहना खटक रहा है। इसीलिए उसने सोचा कि वो आज रात ही यहां से चली जाएगी। इसके लिए रौनक ने सबसे पहले अपनी एक कॉलेज की दोस्त को कोऑर्डिनेट किया और उससे सारी बातें कर ली कि वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहेगी। जब तक उसकी बच्ची 2 से 3 महीने की नहीं हो जाती, तब तक वो उसके यहाँ रहेंगी। उसके बाद रौनक आराम से अपनी बेटी के साथ कहीं और चल जाएगी। फिलहाल उसे 1 महीने के लिए सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। वो अब और सिंघानिया मेंशन में खुट-खुट कर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात कर ली थी और उसकी दोस्त ने उसे बताया कि ऑलरेडी उसका एक फ्लैट खाली पड़ा है, तो अगर रौनक चाहे तो वहां रह सकती है, और वहां पर एक और लड़की रहती है तो वो रौनक का ध्यान भी रख लेगी। वो उस लड़की से उसकी बात भी करवा देगी। उसकी बात सुनते ही रौनक को कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो आज रात ही यहां से चुपके से निकल जाएगी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर स्टडी रूम में आकाश, सुमित, ध्रुव, साथ ही साथ अबीर, अविनाश आस्था की घबराहट को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आस्था के चेहरे पर दुनिया जहान की परेशानी दिखाई देने लगी थी। वो सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी वंशिका जल्दी से वहां आई और आस्था को संभालने लगी। जबकि राधिका और रश्मि घर पर मौजूद नहीं थीं, वे किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं बाहर गई हुई थीं, जिसके बारे में उन्होंने आकाश को बता दिया था। उनकी सेफ्टी के लिए आकाश ने ऑलरेडी अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स राधिका और रश्मि के साथ भेज दिए थे, क्योंकि जब से राजवीर जिंदल इस शहर में आया था, तब से वो अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित थे। वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिना रश्मि और राधिका को बताए उनके पीछे गार्ड भिजवा दिए थे, जो कि छुपकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। वहीं आस्था की हालत देखकर वंशिका का दिल पसीजा जा रहा था, मगर किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए वो आस्था से बोली, आस्था, तुम्हें इस सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर राजवीर जिंदल ने हमारा बनाया हुआ एंटीडोट चोरी करवाया है, तो इसका मतलब साफ है कि हमने जो एंटीडोट बनाया था वो काफी हद तक ठीक बनाया था। जरा सोचो, अगर वो एंटीडोट खराब होता तो राजवीर भला उसे चोरी क्यों करवाता? क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा? तो मुझे लगता है हमें प्रोफेसर साहब के होश में आने का इंतजार करना चाहिए और उनकी गाइडेंस में हम एक बार फिर से वो एंटीडोट तैयार करवा सकते हैं। वंशिका का सुझाव सुनकर आस्था ने उसे कंफ्यूज्ड होकर देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। अचानक आस्था के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना मन कठोर करते हुए जवाब दिया,
नहीं, हम बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से संजना रिएक्ट कर रही थी उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि काफी सारे ऐसे राज हैं जो संजना हमसे छुपा रही है। लेकिन मुझे अब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद मैं डार्क विला जा सकूं, और अब वहां जाकर मैं खुद ही वो एंटीडोट लेकर आऊंगी। अब जैसे ही आस्था ने अपना मन मजबूत करते हुए ये शब्द कहे, वैसे ही अविनाश घबराई आवाज में उस पर बरस पड़ा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी खतरनाक जगह जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? राजवीर जिंदल कोई आम इंसान नहीं है, वो लोग जानवर हैं जानवर, और उनकी मानसिकता पूरी तरह से विकृत है। वो विकृत मानसिकता वाले आदमी हैं, उनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं।